सदानंदन ब्रज जन रंजन सदानंदन ब्रज जन रंजन कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दस स्कंध सात अध्याय पंद्रह श्लोक संख्या तिहत्तर सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश तावद् अश्याम अहम् जगे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम् शुश्रूषयानुषंगेन प्राप्तो अहम् ब्रह्मपुत्रताम् तावद् अश्याम अहम् जगे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम् शुश्रूषयानुषंगेन प्राप्तो अहम् ब्रह्मपुत्रताम् तावद् अश्याम अहम् जगे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम् शुश्रूषयानुषंगेण प्राप्तो अहम् ब्रह्मपुत्रताम्
तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्
शब्दार्थ तावत साप दिए जाने के समय से दास्याम दासी के गर्भ में अहम मैंने यज्ञ जन्म लिया तत्रापि यद्यपि शूद्र होकर ब्रह्मवादिनाम वैदिक ज्ञान में पारंगत लोगों की शुश्रूषया सेवा करके अनुसंगेण एक ही समय प्राप्त प्राप्त किया अहम मैंने ब्रह्मपुत्रताम ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया, फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32 में वर्णन किया है, माम हि पार्थ विपाश्रित्य ये पिशुः पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम्। हे प्रथा पुत्र, जो व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं भले ही वे निम्न जन्मा स्त्रियां वैश्य या शूद्र क्यों न हों, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कोई चाहे शूद्र के रूप में उत्पन्न हो अथवा स्त्री या वैश्य रूप में, यदि वह बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है साधु संगे न तो वह परम सिद्धि तक पहुंच सकता है। श्री नारद मुनि अपना स्वयं का उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य मलेच्छ जैवन या अन्य कुछ हो, यदि वह परम भक्त की संगति करता है तो उसके उपदेशों का पालन करता है और उसकी सेवा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह भक्ति है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भक्ति के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की अनुकूल सेवा सम्मिलित है। अन्याभिलाषिता शून्यम, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा न करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। अनुवाद दोहराएंगे। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णवों की सेवा में लग गया, फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन कह रहे हैं? आए नारद मुनि किसे कह रहे हैं, कहाँ पर कह रहे हैं? आए हस्तिनापुर में तो नारद युधिष्ठिर की वार्ता में नारद जी अपने संपूर्ण जीवन का इतिहास बता रहे हैं कि कैसे मैं उपबरहण गंधर्व था बहुत सुंदर था और कान विद्या में भी बहुत पारंगत था। ऐसे भी गंधर्व लोग के लोग बहुत सुंदर होते हैं और गायन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, संगीत विद्या में बहुत आगे होते हैं, संगीत साहित्य कला विशेष संगीत और कला में बहुत पारंगत होते हैं गंधर्व लोक के वासी। तो गंधर्व लोक में अनेक गंधर्वों में इनका बड़ा सम्मान था। गंधर्वों में इनकी भूमिका बहुत विलक्षण थी और गंधर्वों में बड़ा सम्मान प्राप्त किए थे, उसमें श्रेष्ठता इनको प्राप्त था। वो एक दिन प्रजापतियों ने इनको बुलाया कीर्तन करने के लिए, बहुत अच्छा गाते थे। ऐसे लोग अनूप जलोटा का प्रोग्राम कराते हैं, और भी बहुत सारे गाने वाले हैं, फिल्मी सितारे हैं, तो उन लोग को गाने नाचने के लोग बुलाते हैं कभी कभी, कभी पूजा इत्यादि में भी लोग बुलाते हैं बड़े बड़े संगीतकारों को, तो लोग दोनों गाते हैं, कुछ आध्यात्मिक कुछ भौतिक भी। थोड़ा आध्यात्मिक गाएंगे तो कुछ भौतिक भी परोस देंगे, जैसे बहुत अच्छा हलवा बना करके और उसमें थोड़ा किरासन तेल भी डाल देते हैं। और वो लोग एक कथु पर नहीं रहते हैं, उनका सिद्धांत नहीं है कि केवल भगवान का ही कीर्ति गाना है, जब जहाँ वैसा अवसर देकर गाने लगते हैं, जहाँ जैसा वैसा। लोग भोजपुरी में कहते जैसन जहाँ करी तुसन उठावे भीत, जहाँ का जनता का जो मांग है उसके अनुसार लोग गाते हैं। और वैष्णव होगा तो मांग पर डिपेंड नहीं करता है, उसका जो आधार है उसका जो बेस है उसी में चलता है। तो उपबरहण गंधर्व बहुत सुंदर गान विद्या में दक्ष था और उसके साथ स्त्रियां भी टेरी भरने के लिए थी, पीछे से गाने के लिए, जब आगे से गाते हैं तो पीछे स्त्रियां गाती हैं, तो स्त्रियों के साथ वो गान बजान करता था, उसके सहयोग में स्त्रियां रहती, आगे से वो गाता था पीछे से स्त्रियां गाती। आ सुंदर था ही, बड़ा सुंदर जैसे गान विद्या से सबको आकर्षित करता था, विशेष करके स्त्रियों को भी। जब प्रजापतियों ने बुलाया कि बहुत अच्छा गाता है, कीर्तन गाने के लिए बुलाए वो लोग, तो वहां पर उसने प्रभुपाद जी पीछे के श्लोक में के तात्पर्य में लिखे हैं कि उनका प्रथम अपराध यह था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए, और द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने सामान्य गीतों को, जैसा कि सिनेमा गीतों को, ऐसे अन्य गीतों को भी संकीर्तन के बराबर समझा, संकीर्तन को और सिनेमा गीतों को बराबर ही समझा। इस अपराध हेतु उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। एक तो कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए, और द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने सामान्य गीतों को, चाहे सिनेमा गीतों को या अन्य गीतों को, संकीर्तन के समान समझा। बहुत लोग वैष्णव भजन गाते हैं ना, तो बंगाली में उसमें फिल्मी का भी गीत गा देते हैं, लोग समझेंगे वैष्णव भजन ही गाता होगा, बंगाली में गा रहा मतलब वैष्णव भजन गाता होगा, तो कोई कोई लोग उसमें चटपटा करने के लिए फिल्म में भी गीत है ना, फिल्मों में भी कुछ आध्यात्मिक गीत चोरी करके लिए हैं फिल्मी कलाकार। तो कभी कभी कुछ भक्त लोग को ज्यादा रोचक आकर्षित करने के लिए, तो कम ही रखिए, तो फिल्म में जो आवाज सुनाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, अभी पीछे क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है, अब सुनाई पड़ रहा है, ठीक है तब उतना ही रहने दीजिए। तो कभी कभी लोग आप बंगाली में गा रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान गुजरात वाले तो यही ना सुनते हैं वैष्णव बंगाली वैष्णव भजन हो रहा है, तो जो जानकार हो जान जाते हैं कि ये बाहर का बंगाली गीत गा रहा है वैष्णव भजन के अतिरिक्त। तो ऐसे ही वो भी अपना दिमाग चलाया और कुछ बाहर का भी गीत गाने लगा। तो वहाँ को बड़े बड़े विद्वान लोग थे, वो लोग समझ गए कि वैष्णव भजन से इतर कुछ गा रहा है, या भगवान के संदर्भ में न गाकर कुछ अंसारी गीत गा रहा है, प्रभुपाद जी सिनेमा गीतों जैसा। एवं गौर कृष्ण महाराज कह रहे थे कि जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए, जिस गीत में या साहित्य में भगवान का ऐश्वर्य भगवान का पराक्रम भगवान का माधुर्य का वर्णन नहीं हो तो उसको नहीं गाना चाहिए। जिस गीत में भगवान के विषय में न हो भगवान की महिमा न हो तो उस गीत को नहीं गाना चाहिए। तो नारद भी अपना इतिहास बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि गंधर्व था और प्रजापतियों के सभा में गाने के लिए गया तो वहाँ स्त्रियों के सानिध्य में मैं विचलित हो गया और संसारी गीत गाने लगा, तो प्रजापतियों ने शाप दे दिया कि शूद्र बन जाओ। तो दासी के घर में एक दासी पुत्र बन गए गंधर्व। इतना सुंदर समाज था, इतना अच्छा शरीर भी सुंदर था, संपत्ति भी था, ए धन जौमन पुत्र परिजन, बहुत अच्छा समाज था, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो प्रजापतियों ने श्राप दे दिया कि शूद्र बन जाओ। तो नारद जी कह रहे कि मैं शूद्र दासी के गर्भ से जन्म लिया। तो उनकी माँ दूसरे आश्रमों में जाकर झाड़ू पोता लगाती थी, गरीब परिवार था, और पिताजी भी कुछ समय के बाद मर गए तो केवल माँ बची थी। अम्मा परिवार चलाने के लिए आश्रम में जाकर झाड़ू बुहारू करती थी, नदी से पानी भर कर लाती थी, लकड़ी ला देती थी आश्रम के लिए। बड़े बड़े आश्रमों में पहले ऐसा होता था, कुछ लोग होते थे पानी नदी से लाते थे, लकड़ी ले आते थे, फल फूल लेकर आते थे। तो नारद जी कह रहे कि हमारी माँ जो दासी थी तो भी आश्रमों में आश्रम की सेवा करती थी। कैसे, यहाँ बहुत सारे सुपर हैं सफाई करने वाले, यहाँ मंदिर में बहुत सफाई करने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले, आश्रम साफ करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए, वैसे वहाँ साफ सफाई करना, लकड़ी ले आना जंगल से, कुछ प्लास्टिक आदि और भी जो हवन सामग्री है ले आते थे। तो अपने माँ के साथ दासी पुत्र के रूप में वो भी जाते थे, माँ का आंचल पकड़ करके पीछे पीछे वो भी जाते थे दासी पुत्र के रूप में जब थे, तो भी कुछ सेवा कर देते थे माँ के साथ, भी कभी झाड़ू लगाना सहयोग करते थे माँ के साथ। बेचारा बाप नहीं था माँ ही थी, तो माँ के साथ में हमेशा आना जाना। तो वहाँ पर जो ब्रह्मवादी नाम वैदिक पारंगत वैदिक ज्ञान में पारंगत वहाँ साधु रहते थे। एक जगह प्रभुपाद लिखे वो चातुर्मास व्रत करते थे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, चार महीना साधु लोग एक जगह रह करके ऊर्जा व्रत करते हैं, मतलब ज़्यादा स्वाध्याय करना, जप करना, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो लोग ज्यादा स्वाध्याय करना, जप करना। चार महीने बरसात में नदियों में नालों में पानी भर जाता है, मार्ग सब कीचड़ पानी में अवरुद्ध हो जाते हैं, तो चार महीने ब्रह्मवादी लोग एक जगह रहकर आश्रम में अपना साधना करते हैं, स्वाध्याय करना, जप करना और भी जो भक्ति के आचरण है। इसके बाद फिर प्रचार के लोग जाते थे, चार महीने खूब अच्छा स्वाध्याय करके साधना करके फिर चतुर्मास के बाद फिर से कार्तिक यात्रा होता है। कार्तिक जब वर्षा समापन हो जाता है तब यात्राएं होती हैं, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा है, जगन्नाथपुरी का यात्रा है। बरसात में यात्राएं प्राय कम होती हैं और खास करके वृंदावन की यात्रा जो है कार्तिक में विशेष लोग आते हैं धाम में से, तो जन्माष्टमी पर भी लोग आते हैं, कार्तिक में अधिकांश लोग वृंदावन आते हैं क्योंकि अधिकांश लीलाएं भगवान की कार्तिक महीने में। कार्तिक मास में भगवान की बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं संपन्न हुई हैं, से अमलार्चुन उद्धार, गोवर्धन लीला, उखल बंधन, गोचारण। हाँ, भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया था गोपाष्टमी को, ब्रह्म विमोहन लीला, बहुत सारी लीलाएं संपन्न हुई हैं, गिरिराजधरण लीला लीलाएं हुई हैं। तो ना दासी पुत्र के रूप में आश्रम में माँ के साथ जाते थे, उस सेवा में सहयोग देते थे। तो ब्रह्मवादी वैष्णवों ने रूपा जी लिखे हैं कि वैष्णवों की सेवा करते थे, तो वैष्णव लोग कृपा करके उनको कुछ अपना उचिष्ट दे दिया करते थे। यदि वह परम भक्ति संगति करता है तो उसके उपदेशों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं कि उनकी सेवा करने से इनको इतना ऊंचा पद प्राप्त हुआ कि दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य, मलेच्छ, यवन या अन्य कुछ हो, यदि वह परम भक्ति संगति करता है, उसके उपदेशों का पालन करता है तो उसकी सेवा करता है, और उसकी सेवा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो नारद जी का जीवन में कितना परिवर्तन हुआ कि दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। एक बार नारद जी अपने माँ के साथ गोदोहन के लिए जाते थे, माँ गाय दोहन भी करती थी, अब अकेली थी तो सब काम करना पड़ता था, तो झलफला है मॉर्निंग में गाय दुहने के लिए जा रही थी तो सांप काट दिया तो माँ मर गई। नारद जी दासी पुत्र में बहुत छोटे ही थे, कम उम्र के ही थे, तो माँ मर गई, पिताजी पहले ही मर गए थे, तो अनाश्रित हो गए, अब कोई आश्रय नहीं था उनका, माँ भी मर गई, अब कहाँ जाएंगे। तो नारद जी कहे कि जब माँ मर गई तो मुझे अब यह नहीं सोचता था कि कहाँ जाऊँ कहाँ, ऐसे ही घूमते थे, पूरब जाएं कि पश्चिम जाएं, अब कोई आश्रय ही नहीं, अनाथ हो गए, ऐसे जंगल में घूमते थे, जंगल का कुछ कंदमूल खा लेते थे, नदी का पानी पी लेते थे, जाते थे। लेकिन भक्ति का उनमें प्रभाव आ गया था। भक्तों के सानिध्य में उनका जो सेवा किए थे माँ के साथ, और उनका जो शिष्ट खाए थे, तो उसे उनके हृदय में भक्ति का भाव जो है आ गया था। से निराशित होकर घूमते थे। तो जब कोई आश्रय नहीं था तो कभी पार्वती जी उनको भोजन कराने के लिए आती थी, शिव पार्वती भी सहायता करते थे उनको। जो अन्नपूर्णा उमा जी हैं पार्वती, उनको कभी भोजन प्रदान करते थे। ऐसे घूमते थे और धीरे धीरे उस प्रभाव से भक्तों के सानिध्य का लाभ ऐसा हुआ कि शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। इतना परिवर्तन है। उच्छिष्ट लेपन अनुमोदिते दुजई, उच्छिष्ट वैष्णवों ने प्रसन्न होकर के उनको उच्छिष्ट जो दिया था, जो खाए थे, तो उसका प्रभाव जो है उनके जीवन में बहुत प्रभावकारी हो गया। तो इतना परिवर्तन देखने को मिला नारद जी के। नारद जी यही बता रहे हैं कि यदि कोई भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा न करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर कोई भगवान कृष्ण और उनके भक्त की सेवा करता है बिना कोई स्वार्थ के, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दर्शन से भी, दर्शन से, सेवा से, जैसे गंगा जी को देखने से दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, से गंगा का दर्शन करने से, उसके जल का पान करने से, स्नान करने से, वैसे वैष्णव के भी दर्शन से, दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं। श्रद्धा तपनि शशि अपहरई संत दर्श जिम पातक टरी, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी वैष्णवों के, ब्रह्मवादियों के दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के ताप को चंद्रमा रात्रि में हर लेता है, श्रद्धा तप निशि अपहरई असंत दर्श जिम पातक टरी। और इस तरह से भक्ति का भाव उनके हृदय में जब जागृत हुआ तो इतना परिवर्तन जो है देखने को मिला। भक्ति से बहुत परिवर्तन हो जाता है। मृगारी कितना पशुओं का वध करता था, लेकिन भक्त बनने से वो अब चींटी को भी नहीं मारना चाहता था, इतना परिवर्तन होता है। रत्नाकर डाकू था लेकिन भक्त बन गए, कितना परिवर्तन हो गया। भक्ति करने से वैसे ही परिवर्तन, जैसे कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है और विष अमृत हो जाता है और आग शीतल हो जाती है। काक होई पिक बकौ मराला, जो कौवा है, कौवा के प्रवृत्ति जैसे लोग भी भक्ति के प्रभाव से कोयल बहुत सुंदर बोलने लगते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। कोयल बोलती है तो कितना अच्छा लगता है। जैसे हनुमान जी बंदर हैं लेकिन भक्ति के प्रभाव से देवता के समान उनकी पूजा होती है, भक्ति के चलते हैं। जामवंत जी रिच्छ हैं लेकिन भक्ति, भगवान राम की भक्ति संपन्न करने से देवता भी उनकी पूजा करते हैं, कहते हैं नहीं। काक भुसुंडी कौवा है, कौवा सब कुछ खाता है, लेकिन काक भुसुंडी जी भक्ति के प्रभाव से कितना महान हो गए। कौवा जाति में जन्म लेने के बाद भी भक्ति के प्रभाव से कितना महान भक्त हो गए। उनके यहाँ ऋषि लोग देवता लोग सत्संग के लिए जाते हैं। गरुड़ जी को भी जब मोह हो गया था तो काक भुसुंडी जी के पास गए थे। एक बार भगवान राम सर्प पास में बंद गए थे तो गरुड़ जी को हनुमान जी ले आए सर्प बंधन से मुक्ति के लिए। तो गरुड़ जी सर्पों को खा गए, बंधन खोल दिए। एक मन में विचार आया कि भगवान इनके ऊपर बंधन लगा तो क्या इसको तोड़ने में असमर्थ है कि हमारी जरूरत पड़ी। तो उनके मन में भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, जब अपना बंधन नहीं खोल सकते हैं तो कैसे भगवान है, हमारी सहायता लेनी पड़ी तो भगवान कैसे हैं। तो उनको अज्ञान भ्रम छा गया तो शिव जी के पास गए कि भगवान ये नहीं हो सकते हैं, अगर भगवान होते तो अपना बंधन नहीं खोल सकते थे, कैसे भगवान कृष्ण भी उखल बंधन में बंध गए, बंधन में होते हुए बंधन को तोड़ दिए नलकुवर और मणिग्रीव के, लेकिन अपना बंधन से मुक्त नहीं हुए। माँ यशोदा ने जो बंधन में बांधा था वो बंधन को नहीं तोड़े बल्कि उसी बंधन से दूसरे को बंधन से मुक्त कर दिए। तो कुंती महारानी को भी इस पर भ्रम हो गया था कि भगवान है लेकिन इस तरह रो रहे थे, वह असमर्थता प्रकट कर रहे थे। तो गरुड़ जी को जब संशय हो गया तो शिव जी के पास गए, बोले मेरे संशय का निवारण कीजिए, एक संशय है इसको थोड़ा हम दूर करिए। तो शिव जी कहे कि आप पक्षी हैं, पक्षी राज गरुड़ हैं, आपकी भाषा में हमको कथा करने में दिक्कत होगी, आप काक भुसुंडी जी के यहाँ जाइए, वो आपके भाषा में कथा कहेंगे तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। अब कोई अंग्रेजी में कहे कि हमको थोड़ा समझाइए, आप अंग्रेजी ना जानता हो तो कैसे समझाएगा। तो शिव जी कहे कि गरुड़ जी आप पक्षियों के राजा हैं, आप जाइए काक भुसुंडी नीलगिरी पर्वत पर रोज कथा करते हैं और आपके लिए बहुत आसान होगा, आपकी भाषा में ही कथा होती है, आप पक्षी हैं तो पक्षी की भाषा बहुत अच्छा से जानते हैं, खग जाने खगही के भाषा। तो गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर गए, वहाँ 80 योजन में माया का प्रभाव नहीं होता है, वो क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनका संशय आधा दूर हो गया। अब जैसे गए तो काक भुसुंडी जी अब कथा प्रारंभ करने वाले थे, कथा आरंभ करे सोई चाहा ताही समय गयो खगना। अब कथा प्रारंभ ही होने वाली थी तो गरुड़ जी का आगमन हुआ तो बहुत स्वागत किए, भाई पक्षियों के राजा गरुड़ जी आए हैं तो उनका वेलकम हुआ, सारे पक्षी लोग उठ करके उनका स्वागत किए, माला अर्पण किए, बहुत सौभाग्य है कि हम लोग के राजा आज कथा में आए हैं। हम लोग के राजा में हमारे पक्षी समाज के राजा आए हैं तो बड़ा सौभाग्य है ना उस कथा में, उस कथा के। तो गरुड़ जी वहाँ कुछ समय रह करके कथा सुने काक भुसुंडी जी से, तो कहने का अभिप्राय है कि काक भुसुंडी कौवा हैं लेकिन भक्ति के प्रभाव से उनको संपूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा, भक्ति मतलब क्या, भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना, यही भक्ति है। भक्ति मतलब और कुछ नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना। प्रथम भक्ति है साधु सेवा। साधु सेवा में ही ना श्रवण कीर्तन होगा। आपको श्रवण करना है तो किसे करेंगे, दीवाल से कि साधु संग में ही। इसलिए प्रथम भक्ति साधु संगति है। अब बोले नहीं प्रथम भक्ति श्रवणम है, तो श्रवण का कोई पात्र होना चाहिए ना श्रवण कराने वाला। तादव श्रद्धा तो साधु संग, आदव श्रद्धा ततो साधु संग। तब साधु संग में भजन क्रिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसलिए प्रथम साधु संग होता है तब श्रवण होता है। मस्जिता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भक्त किसी भक्त से मिलता है तो क्या करता है, श्रवणम कीर्तनम मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम। भगवान के भक्त का मन वाणी सब भगवान में लगाता है, मनुष्य वाचा कर्मणा भगवान के कीर्तन में रहते हैं। मच्चित उनका चित भगवान में अर्पित होता है, मदगत प्राणा उनका प्राण भी भगवान के लिए अर्पित होता है, मेरे में प्राण भी अर्पित किया। कथयंतस माम नित्यम, और रोज जो है भगवान के विषय में गाते हैं। परस्परम जब मिलते हैं एक दूसरे से तो भगवान के विषय में, तो श्रवण कहाँ होता है, तो साधु संग में। इसलिए प्रथम भक्ति साधु संग है। और रामायण में तो भगवान राम भी कहे हैं कि प्रथम भक्ति संतनकर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। वहाँ भगवान राम शबरी से कहे कि दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपंत पंकज सेवा तीसरी भक्ति। प्रथम भक्ति साधु संग में श्रवण कीर्तन करना, गुरु के चरण कमलों में निष्ठा से सेवा करना। तो नारद मुनि इस तरह से अपना इतिहास बताते हुए कह रहे हैं कि कितना भारी परिवर्तन हुआ। कौवा जो है कोयल हो गया, बगुला हंस हो गया, जो मिलवैश्य हैं मिलेक्ष हैं जवन हैं, ये भी भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर लिए हैं। मामी पार्थ विपाश्रित्य यो पिशु पापयो नयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र तेपि यान्ति परम गति। कृपा जी कोट किए हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य यो पिशु पापयो नयः। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन हे पार्थ, अगर मेरा कोई आश्रय ले लेता है चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे पापयो नयः बहुत निम्न जोनी में जन्म, निम्न जन्मा स्त्री हो वैश्य तथा शूद्र किरात हुणांत पुलिंद पुलकस आभीर कंक जवन खसा दई एन्ने च पापा यदुपा श्रेया श्रेया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। वो भी महान बन जाते हैं भक्ति के प्रभाव से, साधु के सानिध्य में भगवान की भक्ति में वो शुद्ध हो जाते हैं, चाहे भले ही कितना निम्न परिवार में जन्म लिए हों। किरात शबरी जो है किरात परिवार में जन्म ले थे, लेकिन मतंग मुनि के सानिध्य में भक्ति करके महान पद प्राप्त कर। नौविधा भक्ति की आचार्य है, किरात परिवार में कोलभील परिवार में जन्म लेते, लेकिन भक्ति ऐसा शुद्ध भक्ति संपन्न की कि भगवान उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। शबरी की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं कि तुम में नौविधा भक्ति है, नौविधा भक्ति संपन्न करते थे। भगवान कहे कि नौ में से एक का भी अगर कोई अनुशीलन करता है तो मुझे बहुत प्रिय है। अगर कोई केवल जप ही करता है मान, या कोई केवल सेवा करता है, नौ में से एक एक भक्ति के अंग का भी अगर कोई पालन करता है तो मुझे अतिशय प्रिय है कि भगवान के तुम में है भामिनी, तुम तो नौ विधा प्रकार की भक्ति संपन्न की हो, सब प्रकार से तुम्हारी भक्ति दृढ़ है। तो भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और शबरी के आश्रम में भगवान गए, पंपा सरोवर जहाँ शबरी का गुफा है उसे आगे बढ़ेंगे तो मतंग मुनि का पहाड़ पर मतंग पर्वत है, उसके इधर नदी है, कौन सा नदी है, दो नदियां मिलकर एक हुई हैं, तो नदी के बगल में ऋषिमुख पर्वत है, बहुत सुंदर जगह है किष्किंधाम। आंजनेय पर्वत है जहां आंजनी ने तपस्या किया था, हनुमान जी का जन्म जाओ, बहुत गुफाएं हैं। तो शबरी कितना महान है, भक्ति के प्रभाव से संतों के सानिध्य में भक्ति संपन्न करके महान हुई, जिसके आश्रम में स्वयं भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शबरी बहुत निम्न जन्मा थी, उसको छाया पड़ने से लोग नहाने जाते थे, जबकि स्किंधा में शबरी रहती थी तो आती थी तो लोग दूर भाग जाते थे कि शबरी आ रही है, बहुत निम्न जाति की है। उसको छाया भी गिरने पर लोग स्नान करते थे। तो कुछ समय के बाद एक घटना हुई, वो सरोवर में पानी लेने वो भी जाती थी, पंपा सरोवर में, तो वहाँ के रहने वाले महर्षियों ने कहा कि आप बहुत निम्न जाति को हो, यहाँ पानी मत लाने आना, इस पानी से हम लोग अभिषेक करते हैं भगवान का, उनकी पूजा सेवा करते हैं, आप पानी में हाथ मत डालना, बहुत निम्न जाति की हो, पानी गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शबरी को मना कर दिए, पानी लाने बंद कर दी। तो कुछ समय बाद सरोवर में पानी दूषित हो गया, कीड़े हो गए, पानी में पूरा कीड़े पड़ गए, पानी में दुर्गंध आने लगा। तो वहां रहने वाले महर्षियों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया, पानी पानी का रंग भी परिवर्तन हो गया, इसमें गंध आने लगा, कीड़े भर गए। तो भगवान राम एक बार वहां गए तो वहां के रहने वाले महर्षियों ने कहा कि प्रभु आप आए हैं तो आपके तो चरण में गंगा निवास करती है, सारे तीर्थ आपके चरण में हैं, आप तीर्थ पाद हैं, आपके पाद में सारे तीर्थ हैं, इसमें अपना पांव डाल दीजिए कि ये भी गंगा हो जाए, पवित्र हो जाए, इसका जल दूषित हो गया है, आप कृपा करके इसको शुद्ध कर दीजिए। भगवान कहे कि ऐसे नहीं होगा, इस शबरी का चरण रज लेकर इसमें डाल दो आप लोग। तो बड़ा सब महर्षि लोग ऋषि मुनि लोग अवाक रह गए, जिसको हम लोग मना किए थे और करें उसी का चरण रज इसमें डाल दो। शबरी के बोले कि चरण रज दे दो, शबरी भाग गई वहां से। बोले कि अपना चरण रज दे दो, प्रभु श्री राम जी कहे हैं कि सरोवर में डाल देने से पानी निर्मल हो जाएगा, तो भाग गई हो। बोले कि वो तो भाग गई, भगवान राम के पास कि आप कहे लेकिन वो सुनते ही भाग गई हो। भगवान कहे कि जहां जहां उसका चरण गिरा है वहीं से धूल लेकर डाल दो आप लोग, उसके पद का जहां जहां चिन्ह है वहां का रज लाकर धूल लाकर इसमें डाल दो। तो महर्षियों ने ऐसा ही किया कि चरण जहां जमीन पर थे वहां का धूल डाल दिए तो पानी दम में हो गया, कलकल हो गया, निर्मल हो गया। तो भगवान अपने भक्त की महिमा को वहां स्थापित किए कि मेरा भक्त चाहे निम्न जाति का हो, चाहे उसका पारिवारिक उसका सामाजिक उनका आर्थिक स्थिति कैसा भी दयनीय हो, अगर भक्त है भक्ति संपन्न किया है तो महान हो जाता है। तो शबरी कितना महान हो गई। उसी तरह से विश्वावसु भील जाति के थे, नील माधव की सेवा करते थे विश्वावसु, जगन्नाथ जी की सेवा में साल बेग, साल बेग ना मुसलमान जाति के थे, साल वेग भक्त बन गया और सिंह द्वार में जगन्नाथ का भजन गाता था। साल वेग इतना महान भक्त हो गया, उसके गान सुनने के लिए और उसको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी आ गए सिंह द्वार में। आज तक वहां पतित पावन रति रमन प्रभु पतित पावन अपने ऐसे भक्तों को दर्शन देने के स्वयं जगन्नाथ जी वहां आ गए सिंह द्वार में कॉर्नर में है। आज तक जो लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं होता है तो वही पतित पावन जगन्नाथ का वहां से दर्शन कर लेते हैं, दिखाई देते हैं। साल वेग दासिया बावड़ी जगन्नाथ का भक्त बहुत निम्न जाति का था, उसको भी लोग छू स्पर्श करने पर स्नान करते थे दासिया बावड़ी। लेकिन भगवान एक भक्ति का संबंध देखते हैं, वो जाति पाति का ये नहीं देखते, देखते हैं कि यह भक्त है, ये देखते हैं बहुत धनी है, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ये भगवान ही, उसका भक्ति के चलते उससे भगवान संबंध बनाते हैं, उसका जाति कुल आदि पर विचार नहीं करते हैं भगवान। दासिया बावड़ी इतना महान भक्त था, एक बार रथ यात्रा में नहीं जा पाया था तो उसके गांव के ब्राह्मण गोसाई जा रहे थे तो कहा कि हम तो नहीं इस बार रथ यात्रा में जा रहे हैं, हमारे तरफ से नारियल लीजिए और जगन्नाथ को दे दीजिएगा, लेकिन ये कहिएगा कि आपका भक्त दासिया बावड़ी ये नारियल दिया है, ये हाथ से ले लीजिए। पंडित जी को कहा कि ऐसे मत दीजिएगा, यही बोलेगा आपका भक्त दासी या बावड़ी ने नारियल दिया है, ये हाथ से ले लीजिए। तो पंडित जी भी बोले कि हाथ से कैसे लेंगे आप, नहीं नहीं आप बोलिएगा नहीं लेंगे वापस ले आइएगा, ऐसे ही है ना रति रमन प्रभु। वो बोला कि वो आप वापस ले आइएगा, अगर वो ले लेगा कालिया तो ठीक है नहीं आपके हाथ से नहीं तो वापस लाइएगा। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त होते हैं कि भगवान को भी आदेश देते हैं, भगवान को आदेश दिया कि अगर हाथ से लेना होगा तो ठीक है ले लेना हाथ से, नहीं तो वापस ले आइएगा। तो पंडित जी गोसाई जगन्नाथ मंदिर में जाकर जोर जोर से कह रहे थे कि आपका भक्त दासिया बावड़ी, बावड़ी ना दासिया बावड़ी ने नारियल फल दिया है, आप ले लीजिए हमारे हाथ से, जोर जोर से बोल रहा था आपका भक्त दासिया बावड़ी, शायद ध्यान इधर उधर होगा इसलिए जोर से बोल रहा था कि सुन लेंगे, ये नारियल फल ले लीजिए, नहीं तो कहा कि नहीं लेंगे तो वापस ले आना। तो पंडाल लोग कहे कि पागल हो गए हो, जगन्नाथ को भोग ऐसे थोड़े लगता है, हम लोग भोग लगाते हैं तब न स्वीकार करते हैं, वो दक्षिणा के साथ दो, हम लोग घंटी बजाकर मंत्रोच्चारण करके को जल से शुद्धि करके जगन्नाथ के सामने निवेदन करेंगे तब न लेंगे, ऐसे जगन्नाथ थोड़े लेने वाले हैं। तो हजरत ये पागल आदमी आ गया है, अरे दो दक्षिणा दो, हम लोग जगन्नाथ के परिकर हैं, हम लोग देंगे तब न लेंगे, तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से थोड़े जगन्नाथ सुनने वाले हैं, से बार बार बोल रहा था। तो जगन्नाथ को भी अपने भक्त का याद आया कि हमारा भक्त ने भेजा है तो उसको लेना चाहिए, भगवान अपने भक्त का कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त या प्रयच्छति, भक्त अगर भगवान के लिए कुछ भी देता है भक्ति से तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जगन्नाथ जी अपना हाथ लंबा किए, विराट भगवान का तो विराट रूप भी है ना, हाथ लंबा करके ले लिए, सब देखते रह गए सब लोग। तो इतने ऐसे महान भक्त हुए हैं जो अपनी भक्ति से भगवान को भी वश में कर लिए हैं, भगवान अपने भक्त के अधीन कार्य करते हैं, अनेक भक्त हुए हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि नारद मुनि अपना स्वयं का उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य मलेच्छ यवन या अन्य कुछ हो, यदि वह परम भक्त की संगति करता है और उसके उपदेशों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह भक्ति है, यह भक्ति है। तो नारद मुनि देखिए गंधर्व से दासी पुत्र बने और दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र बने, इस तरह से नारद जी महान आचार्य हो गए। भक्ति शक्ति के अवतार हैं, भक्ति के शक्त्यावेशित अवतार हैं। नारद जी भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक हो गए और उनके बड़े बड़े महान शिष्य हैं। जितना प्रचार नारद जी के उतना कोई नहीं किया है, और जितने महान शिष्य नारद जी के हैं, से वेद व्यास, व्यास जी नारद के शिष्य हैं, आदि कवि वाल्मीकि उन्हीं के शिष्य हैं, बहेलिया मृगारी उन्हीं का शिष्य है, प्रहलाद महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, ध्रुव महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, और नारद जी के परंपरा में प्रभुपाद जी बोलते हम लोग भी उसी परंपरा में हैं। ब्रह्मा जी और नारद जी की परंपरा में ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जो है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी वेद व्यास को, ऐसे उसी परंपरा में हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं। तो नारद जी एक महान आचार्य हैं, कहाँ से कहाँ भक्ति करके साधु संग से भगवान की सेवा करके कितना महान बन गए। भक्त और भगवान की सेवा से कितना चमत्कार हो गया है कि निम्न स्तर से कितना ऊंचा स्तर पर पहुंच गए। तो इस तरह से नारद जी अपना जीवन का वृतांत दृष्टि महाराज से कह करके भगवान और भगवान की सेवा की महिमा का महात्म्य, उसका महत्व दर्शा रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की काय और प्रमाण।
हरे कृष्ण महाराज जी, एक सज्जन ने, एक तो सबसे पहले आपने श्री प्रभुपाद जी के जगन्नाथ जो दासिया बावड़ी का उद्बोधन में व्यक्त किया कि दासिया बावड़ी के कर कमल से जो नारियल भेजा गया वो भगवान से जगन्नाथ जी ने अपने कर कमल से स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी के कर कमल का प्रसाद संपूर्ण विश्व को प्राप्त कराया श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से। और श्री प्रभुपाद जी पूरे जगन्नाथ पुरी को संपूर्ण विश्व में विराजमान कर दिए। तो अगर कोई जगन्नाथ में संपूर्ण विश्व को बनाया तो श्री प्रभुपाद जी ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से। तो एक जिज्ञासा है, प्रश्न उत्तर का भी समय होता है। जिज्ञासा है कि आपकी वाणी बहुत ही मैं रही और बड़ा ही आपने सटीक संबंध की संदेश दिया। जिज्ञासा है कि